बोलिए सच्चिदानंद भगवान की हरि ओ। हरि ओ। वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तंति दिव्ये स्तवे वेदैशांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यां तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरे। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सददं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय। गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय। गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय। 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 गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय। गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय। जप मन मेरे ओम नमः शिवाय। जप मन मेरे ओम नमः शिवाय। रट मन मेरे ओम नमः शिवाय। रट मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। 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 गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय। गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। सदघन चिदघन आनंद घन कल्याण गुण गण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय प्रभु के असीम अहेतु की कृपा के साथ हम लोग कल विचार कर रहे थे सतत मन प्रसन्न रहे। बुद्धि में समता रहे, सतत अपने मन को प्रसन्न रखना भक्ति है, और अपनी बुद्धि में स्थिरता, बुद्धि का स्थिर होना ज्ञान है। बुद्धि, या यूं कहिए कि बुद्धि की स्थिरता को ज्ञान कहते हैं और मन की प्रसन्नता को भक्ति कहते हैं। सरल शब्दों में, मन सतत प्रसन्न रहे, प्रसन्नता बनी रहे। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान स्वयं मेव कहते हैं, इंद्रियाणि मनस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। मन एक प्रभु की विभूति है, क्योंकि विभूति योग में जहां जहां पर कोई विशिष्टता दिखाई पड़ती है तो उस सब को भगवान ने कहा है कि वो मैं ही। इंद्रियों में मन यदि भगवान है तो मन को प्रसन्न कैसे रखा जाए? चाहते सब हैं, सब कोई चाहता है कि हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहे, कोई अपने मन को अशांत दुखी रखना नहीं चाहता, या चाहता है, कोई भी नहीं चाहता होगा कि उसका मन दुखी रहे, सभी चाहते हैं, पर क्या सब कोई अपने मन को हमेशा प्रसन्न रख पाते हैं? और या सदैव अपने मन को प्रसन्न रखने में कितने लोग सफल हो पाते हैं? बोले संतुष्टम सतत योगी, सतत प्रसन्नता, संतुष्टि, प्रसन्नता तो योगी को ही प्राप्त होती है, और वह योगी जो परमात्मा के साथ जुड़ गया है, जिसका मन भगवान से जुड़ गया, परमात्मा से जुड़ गया, जब तक मन का जुड़ाव, मन का लगाव संसार के साथ रहेगा, प्रपंच के साथ दौड़ेगा ये मन, तब तक संसार में भटकता हुआ प्रपंच से युक्त जो मन है, और मन प्रपंच के साथ जुड़ जाता है माने मन विषयों के संग, विषयों के साथ भोगों के लिए भागता हुआ जो मन है वो संसार में हमें भटकाता है ना। भागते फिरते थे जब तक लुप्त, संसार में खूब भागे, दौड़े इस मन के साथ, परंतु आज तक कहीं भी इस मन को परम विश्राम नहीं मिला, आराम नहीं मिला। भागे तो थे सुख के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, पर विचार करो कि क्या विषयों के साथ भागकर इस मन को विश्राम की प्राप्ति हुई? बोले नहीं। तो मन का विश्राम, मन की प्रसन्नता भगवान के साथ जुड़ने में है। ईश्वर के साथ जब तक मन जुड़ेगा नहीं तब तक मन प्रसन्न रह नहीं सकता, या यूं कहिए मन को सदैव प्रसन्न रखने की एक ही युक्ति है, वह युक्ति है मन ईश्वर के साथ जुड़ जाए। चाहे अब मन को परमात्मा में जोड़ने के लिए, लगाने के लिए अनेका अनेक साधन संतों ने बताए हैं, शास्त्रों ने बताए हैं, कि इन साधनों से साधन और तत्परता के साथ, साधन कैसे होने चाहिए बोले बड़ी तत्परता के साथ, और साधन कैसे होने चाहिए बड़ी श्रद्धा के साथ, और जब हम श्रद्धा से युक्त होकर साधन में तत्पर होकर अपने मन को भगवान में लगाने रखने का प्रयास करते हैं तो धीरे 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 ये मन भगवान के साथ जुड़ते लगता है। ज्यों ज्यों मन परमात्मा में स्थिर होता है त्यों त्यों ये मन प्रसन्न होता है। नारायण, उदाहरण के लिए आप ये कहें कि इस मन को सतत भगवान में बनाए रखना, ईश्वर के साथ जोड़े रखना, क्योंकि मन का स्वभाव तो बड़ा चंचल है, बड़ा ही चंचल ये मन है। और कैसे इस मन को सतत भगवान के साथ लगाया जा सके, तो मन में चंचलता है, बोले ये चंचलता मन के बाह्य रूप में है। आपके समक्ष समुद्र है, समुद्र का बाहरी रूप बड़ा ही चंचल दिखाई देता है, इतना चंचल है कि बड़ी बड़ी उत्तान तरंगें उस पे दिखाई पड़ती हैं, बड़ा अशांत दिखता है, बड़ा शोरगुल दिखता है। और ये देख करके कोई समुद्र के लिए ये निर्णय करके बैठ जाए कि बस समुद्र तो वो है जिसमें बड़ा शोर है, बड़ी अशांति है, बड़ी उछल कूद है, केवल इतना ही सोच करके अपनी धारणा समुद्र के लिए ऐसी करके बैठ जाए, तो क्या आप उसे पूर्ण समुद्र का पूर्ण ज्ञान समझेंगे? वो तो समुद्र का केवल एक बाहरी जो दिखने वाला रूप है, वो ऐसा दिखाई पड़ता है। उसी समुद्र का जो भीतरी रूप है, अंतर स्थित है, अंतर रूप है, भीतरी रूप है, गंभीरता से यदि विचार करें तो समुद्र के भीतर जितना गहरे आप जाते जाएंगे उतनी समुद्र के अंदर गंभीरता स्थिरता मालूम पड़े। भीतर का जल भागता हुआ नहीं, मन का एक बाह्य जो रूप है जिसमें बड़ी अशांति बड़ी चंचलता दिखाई पड़ती है, उसे देखकर हम निश्चय कर लें कि बस यही मन बड़ा ही चंचल है, ऐसा मन के लिए सोच करके ये तो चंचल है, स्थिर नहीं होता है, भगवान में नहीं लगता, इसको रोकना बड़ा कठिन है, ये हमसे होगा नहीं, ये सोच करके ये धारणा बनाकर हम बैठ जाएं मन के लिए, तो वो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हमें गंभीरता से इस मन को लेना होगा कि मन का भीतरी जो रूप है वो अत्यंत शांत है, और उस शांत स्थिर मन में मन के पीछे जितना लौट करके आओगे, मन के भीतर पहुंचते जाओगे, ज्यों ज्यों मन में डूबते जाएंगे त्यों त्यों आप में स्थिरता आती जाएगी। मन के भीतरी जो एकाग्र मन है, जिस मन में एकाग्रता है, स्थिरता है, उस मन में बड़ी प्रसन्नता है, बहुत आनंद है ना। प्रसन्नता मन के भीतर है, प्रसन्नता हमें बाहर खोजने पर हम सोचें कि हमें प्रसन्नता मिलेगी, नहीं मिल सकती। अब मन प्रसन्न तो उसका है, परंतु मन के भीतर आने के लिए मन को भगवान में लगाकर मन को स्थिर किया जा सकता है, और भगवान में लगाने के लिए भगवान का भजन करें। भजन हम कर्म करके भी, कर्म जैसा कि कल मैंने चर्चा की थी, मेरा प्रत्येक कर्म भजन बन जाए, जो भी कर्म, एक कर्म कर्माणि कहा भगवान ने, अनेक कर्म करो, कर्माणि कुरु, ऐसा नहीं कहा कि यही काम करो। कर्माणि कुरु का अर्थ है कि बहुत सारे कर्म, जो भी कर्म आप करें करो, परंतु कैसे करो, बोले योग युक्त होकर करो, स्थित होकर समत्व के साथ कर्म करें। और समत्व के साथ कर्म करने के लिए कहा तो जो कर्म करें वो कर्म कैसे करें, बोले समत्व के साथ, और समत्व के साथ करते हुए यदि नहीं कर सकते, समभाव से नहीं कर सकते हैं, तो वो कर्म भगवान के लिए करें, जैसा कि मैंने कल कहा था कि भगवान के लिए करें। यदि आप भगवान के लिए कर्म करते हैं तो वो कर्म आपकी उपासना है, वो कर्म आपकी पूजा है, और इससे धीरे धीरे ज्यो ज्यो आपका मन परमात्मा में एकाग्र होता जाएगा, त्यों त्यों आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होती जाएगी। मन अशांत कब तक रहता है? मान लो किसी व्यक्ति के पास एक घोड़ा है, घोड़ा, और वो घोड़ा उसने किसी दूसरे स्वामी को बेच दिया। घोड़ा बेच दिया गया, घोड़ा नहीं पहचानता अपने नए स्वामी को, नए मालिक को। उसने घोड़ा ले जाकर नई घुड़साल में बांध दिया। घोड़े को सब नया नया लग रहा है और वो घोड़ा अवसर पाकर वहां से भाग निकला, आ पहुंचा अपने पुराने मालिक के पास। जब पुराने मालिक के पास आया तो पुराने मालिक ने देखा कि ये घोड़ा अब मेरा नहीं है, इसे तो मैं बेच चुका हूं। उसने ईमानदारी से उस घोड़े को उसके स्थान पर पहुंचा दिया। फिर मौका मिला और फिर से घोड़ा भागा और पुराने मालिक ने फिर उसे ले जाकर वहीं पहुंचा दिया। घोड़ा भाग रहा है और वो बार बार वहां पहुंचा रहा है। धीरे धीरे वहां रहते रहते और पुराना नया मालिक घोड़े को के सामने आने लगा। आते जाते वो नए मालिक को देखता है और वहां रहने लगा है, तो धीरे 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 जैसे जैसे घोड़े के परिचय में वो स्थान आता गया, वो नया मालिक आता गया और उसे वो अपना समझने लगा और घोड़े का भागना बंद हो गया। उसी तरह से ये मन रूपी एक घोड़ा हमारे पास है जो बार बार भागता है। आप विवेक के साथ, विचार के साथ इस मन को जहां तहां से लाकर भगवान के समीप पहुंचाते हैं, पर परमात्मा का अस्तित्व तो इसने स्वीकार नहीं किया है। ईश्वर का अस्तित्व तो यदि मन ने स्वीकार लिया होता, ईश्वर के अस्तित्व तो में के साथ मन मिल गया होता तो मन भागता नहीं। परमात्मा का अस्तित्व तो मन स्वीकार करे। अभी हमारे मन, यदि हमारा मन ईश्वर से विचलित हो रहा है, भाग रहा है, तो समझिए कि अभी हमारे मन ने पूर्ण रूप से उसके अस्तित्व को स्वीकारा नहीं है। जिस दिन मन पूर्ण रूपेण परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लेगा, उस दिन ये मन ईश्वर से हटकर कहीं दूसरी जगह जाएगा नहीं। इसीलिए हमें बार बार सत्संग, स्वाध्याय आदि की आवश्यकता पड़ती है कि ताकि सुनते सुनते धीरे 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 इस अभ्यास के द्वारा हमारा मन ईश्वरीय अस्तित्व को स्वीकार ले और स्वीकार क्या ले, ईश्वर के अस्तित्व में अपने आप को मिला ले। यदि आप मिला, जब तक मिलाने वाले बने रहेंगे तब तक ये मन भागता रहेगा। सहज में स्वभावगत, स्वाभाविक रूप से ये मन परमात्मा के अस्तित्व को अपना ले, उसमें अपने आप को मिटा दे, भगवदाकार हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए इस मन की, ये मन भगवतमय हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना है? बोले यही करना है कि ईश्वर का मन जो परमात्मा से विचलित हो रहा है, इसे इस बड़े संयम के द्वारा इस मन को परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकारने में, इसके साथ अब हठ योग का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? बोले तब भी यही होगा कि लोहा जब तक अग्नि के संग में रहेगा, अग्नि का संग पाकर लोहा अपना आकार अग्नि के समान दहकता हुआ दिखाई पड़ेगा और अग्नि का गुण भी उसमें आ जाएगा, वो जला भी सकता है और बड़ा तेजस्वी लाल दिखाई भी दे रहा है, पर जैसे ही लोहे को अग्नि के संग से अलग किया,
उसका रूप भी नहीं रहा, अग्नि का रूप भी नहीं रहा और अग्नि की शक्ति दाहकता भी नहीं रही, वो धीरे धीरे लोहा काला बन गया। उसी तरह से हमारा मन यदि आप हट योग के द्वारा जैसे तैसे भगवान के साथ जोड़े रखेंगे तो जितनी देर आप उसके संग में रहेंगे तब तक तो ये मन कदाचित हो सकता है कि भगवत स्वरूप में हठ योग के द्वारा आप जोड़े रखने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे जैसे परमात्मा से हटी वृत्ति वही पूर्ण रूप में आ जाएगी। इसलिए ऐसा कार्य न हो, केवल हट से नहीं ज्ञान से विचार से विवेक से, विचार पूर्वक अर्थात विवेक पूर्वक, विवेक और वैराग्य के साथ ये मन को हम समझें और मन को समझ करके आखिर ये मन जो एक वृत्ति है ये वृत्ति भगवदाकार वृत्ति बन जाए, उसके लिए हमें विचार करना चाहिए। सतशास्त्र का विचार करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें और जिससे धीरे धीरे संसार से इस मन को हटाकर भगवान में लगाएं, बड़े राजयोग के साथ सांख्य योग के साथ, न केवल हट से। मैं हमेशा कहा करती हूँ दिए को इतना खुला भी मत छोड़ो कि वो हवा के साथ बुझ जाए, इतना बंद भी मत कर दो कि वो दिया जल ही न सके। मन तुम्हारा एक ऐसा दीपक है, इसके साथ हट धर्मिता भी प्रयोग मत करो और हट धर्मिता को छोड़कर इतना इसे खुला भी मत छोड़ दो, जहां जाए जाने दो, जो करे करने दो, इतना इसे स्वच्छंद भी मत बनाओ कि ये दिया जल ही न सके, ये मन परमात्मा तक पहुंच ही न सके, ऐसा न करे। जैसे एक दिए को जलने के लिए हवा से बाढ़ भी चाहिए और उसे यदि प्रकाश हवा भी मिलती रहेगी तो दिया दीर्घ काल तक स्वस्थ रूप से जलता रहेगा। उसी तरह से ये मन रूपी एक दिया है और इस दिए को जलने के लिए इसके साथ बहुत कठोरता भी नहीं और बड़ी सहजता भी नहीं, इसे विचार पूर्वक संत कहते हैं कि भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहिए और धीरे धीरे ऐसा करने से जो मन परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार करेगा त्यों त्यों मन में प्रसन्नता स्वतः प्राप्त होगी। और दूसरी बात, हम जो कुछ भी करते हैं वो किसके लिए करते हैं? बोले हमारी सारी चेष्टाएं अर्थात सारे कर्म हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। बढ़िया भोजन पाकर मन प्रसन्न हो जाए, बढ़िया कपड़ा पहनकर मन प्रसन्न हो जाए, बढ़िया दृश्य देख करके मन प्रसन्न हो जाए, आंखों का विषय आंखों को दे रहे हैं और मन को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, कानों का विषय कान को मिल रहा है और इसके माध्यम से कान का विषय कान को देकर मन को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। याद रखना यह तो अन्य अन्य इंद्रियों के विषय हैं, परंतु मन जिससे प्रसन्न हो सकता है, या यूं कहिए ये तो अन्य अन्य इंद्रियों के भोजन हैं, आंखों का भोजन रूप है, कानों का भोजन शब्द है, नासिका का भोजन गंध है, हर इंद्री का भोजन अलग अलग है और अपने अपने भोज्य को भोजन को पाकर ये इंद्री प्रसन्न होती है, ये इंद्री की प्रसन्नता क्षणिक है, पर हमारी चेष्टा क्या रहती है कि इसे पाकर मेरा मन तृप्त हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, मन संतुष्ट हो जाए। परंतु आज तक हुआ नहीं, इसलिए हमें विचार करना होगा कि जब तक मन का भोजन मन को नहीं मिलेगा, मन की प्रसन्नता किस बात में? मन की प्रसन्नता है रस को पाकर। रस से मन प्रसन्न होता है, मन रस की ओर भागता है, बुद्धि सत्यता से आकर्षित होती है, मन का आकर्षण रस में है। बोली क्यों? क्योंकि मन की उत्पत्ति रस से हुई है। मन जो जिसका अंश है, सत्वांश रस से, सत्वगुण के रस से इस मन की उत्पत्ति हुई है, अर्थात ये मन परमात्मा का अंश है। इसीलिए गुरु नानक देव ने बड़ी संत वाणी है, रे मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। ये मन ज्योतिर्मय है, प्रकाश स्वरूप है। बोले इसमें प्रकाश है, रसमय है। तो रसो वेश रस कौन? बोले परमात्मा ही रस रूप है। उपनिषद कहती हैं कि परमात्मा का स्वरूप रसमय है, रसो वेश। और ये मन की तलाश, मन की खोज, मन की प्यास रस को पाने के लिए है। जब तक रस रूप ब्रह्म की इसे प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो मन को रस मिले, आनंद मिले। ये रस कहाँ है? बोले परमात्मा में है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान का भजन, और भजन क्या है? रसम नामम भजन। भजन एक रस है, भजन एक आनंद है। और जो भजन का रस, भजन करने से रस मिलता है, आनंद मिलता है। राम का भजन करते हैं तो आनंद आता है कहते हैं। भजन करने से बार बार रस लेना, जैसे मिश्री की डली को आप अपने मुख में रखकर बड़े प्यार से उसका रस अपने भीतर लेते हैं, ऐसे ही परमात्मा से रस लेने का नाम। भौरा फूल से रस लेता है, उसका तत्व सार लेता है, वैसे ही ये मन आपका परमात्मा से के साथ जुड़कर उससे रस ले, और उस रस को पाकर ये मन आनंदित हो जाए। यह लब्धा आनंदम भवति, जिसे पाकर के वो बड़ा आनंदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंद स्वरूप जाए, वो भगवान की परमात्मा की प्राप्ति से ही हो सकता है। अर्थात स्वयं में, अपने आप में उसे रस की प्राप्ति हो, जिससे वो प्रसन्न रह सके। दूसरी बात, मन प्रसन्न हो सकता है केवल केवल भगवान के भजन से। सत हरि भजन, सत्य परमात्मा है और परमात्मा स्वरूप ही भजन है, रस है, और उसको पाकर के ही ये मन प्रसन्न हो सकता है। दूसरी बात मैंने कही थी कि बुद्धि में समता हो, स्थिरता हो, और बुद्धि को सम स्थिर करने के लिए कैसे ये मन विचार पूर्वक। बोले कैसे? विचार के साथ। जिसने अपनी इंद्रियों को विचार पूर्वक विषयों से अलग कर लिया। भगवान ने दूसरे अध्याय में ही एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। यद्यपि भगवत गीता तत्व है, इसमें कोई दृष्टांत नहीं, उदाहरण नहीं, परंतु भगवान ने फिर भी इसमें बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया। दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक देखें, भगवान ने कुर्म का उदाहरण दिया, कछुए का।
यदा संहरते चायं कुर्म अंगनीव सर्वशः। इंद्रियाणि अदर्थम अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
भगवान कहते हैं जैसे कुर्म अंग नीव सर्वश, कुर्म माने कछुआ, कच्छप, भगवान के 24 अवतारों में कच्छप अवतार है। इस अवतार की बड़ी सुंदर कथा भागवत में आप लोगों ने सुनी होगी। भगवान का कच्छप अवतार कब हुआ? बोले ये अवतार भगवान ने लिया जब समुद्र मंथन का समय आया, और समुद्र मंथन की कथा अमृत के साथ जुड़ी हुई है। मंद्रांचल पर्वत को लेकर वासुकी नाग को की रस्सी बनाकर देवता और असुर दोनों ही सागर मंथन करने लगे। सागर मंथन करते समय जब मंद्रांचल को घुमाने लगे मथानी के रूप में, तो वो पर्वत जल में डूबने लगा, समुद्र में डूबने लगा। ऐसे समय पर भगवान ने अवतार लेकर इस पर्वत को, मंद्रांचल पर्वत को अपने पीठ में उठा लिया, अर्थात भगवान मंद्रांचल पर्वत के आधार बन गए। कुर्म कहते हैं आधार शक्ति को, कुर्म आधार शक्ति है। आधार कैसा होना चाहिए? बोले कुर्म की नहीं, कच्छप की नहीं। इसकी विशेषता है, इसकी पीठ इतनी मजबूत है, कछुए को छुओ, कच्छप कहते हैं, कच्छ कहते हैं वैसे तो जल प्रदेश को जहां बहुत सारा जल होता है, और जल के प्रदेश में रहने वाला ये कच्छप, कछुआ, इसकी पीठ इतनी मजबूत होती है कि इसे छुओ तो न तो ये भागता है और न ये मारता है। अन्य पशुओं का, जीवों का जैसा स्वभाव होता है कि छेड़ने पर वो डसने के लिए, मारने के लिए आता है, या डर के मारे भागता है, कछुए में ये दोनों चीजें नहीं होती। उसके बाहर की पीठ इतनी मजबूत होती है, वो केवल एक काम करता है, अपने सारे अंगों को समेट कर खोल में बंद कर लेता है, पीठ में छुप अंदर कर लेता है। जो अंग बाहर निकले हैं उन सब को अपने अंदर कर लेता, कुर्म अंग नहीं होता। उसी तरह से जिसने अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट करके, एक से नहीं विषयों से, सभी विषयों से, एक एक विषय का छोड़ने से त्यागी नहीं हो जाता, परंतु भगवान कहते हैं सर्व विषयों से, सभी विषयों से जिसने अपने अंगों को समेट लिया हो और अपने भीतर स्थिर कर लिया है, वो है स्थिर बुद्धि। और फिर वो सम है, उसमें भय नहीं है कछुए में, और दूसरी बात वो आक्रमण भी नहीं करता। किसी से लड़ने जाओगे विरोध करने पर, विरोध करने में लड़ने के लिए चले जाओगे तो लड़ते हुए सारा समय निकल जाएगा। इसलिए लड़ाई में भी समय नहीं जाना चाहिए। और कोई छेड़े उससे वाद विवाद करने लगोगे तो भी सारा समय चला जाएगा। और भागोगे डर के तो बोले भागना भी नहीं है, भागोगे तो जाओगे कहां। कोई आदमी भाग करके जाना चाहे, मैं संसार छोड़ करके भाग जाऊं, कई बार आता है ना मन में कंटाला कि सब छोड़छाड़ के भाग जाओ, बोले भाग करके जाओगे कहां। विचार करो, जिससे भाग करके आप कहीं दूर जाकर जंगल में बैठना चाहोगे तो जंगल में बैठने पर भी क्या वहां तुम्हें ये पंचभूत नहीं होंगे, क्या वहां तुम्हें शोर नहीं सुनाई देगा। शहर में मनुष्यों का कोलाहल तो जंगल में पक्षियों का कोलाहल, और शहर में भय चोर डाकुओं का तो जंगल में हिंसक जानवरों का भय। भय तो वहां भी रहेगा, शोर वहां भी रहेगा। और इसके साथ कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं दूर जाकर मेरा मन शांत हो जाएगा, याद रखना सब कुछ छोड़ करके भाग तो जाओगे परंतु जिस मन ने तुम्हें ये यहां अशांत किया है वो मन तो आपका जंगल में भी साथ चलेगा। और दूसरी बात, भाग करके जाओगे परंतु प्रारब्ध से कहां भागोगे। नारायण, जो तीव्रतर प्रारब्ध है वो आपकी बंबई में रह जाएगी और आप गंगोत्री में जाके बैठ जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपके साथ साथ जो आपकी तीव्रतर प्रारब्ध बनी हुई है वो तो वहां भी साथ में चलेगी। जिस प्रारब्ध भोग से आप डर करके भागना चाह रहे हैं वो तो आपके साथ रहेगी। इसलिए कछुआ भागता भी नहीं है, भागना भी नहीं है, और मारना भी नहीं है, वो मारता भी नहीं है, भागता भी नहीं है, हमें लड़ना भी नहीं है और हमें भागना भी नहीं। क्या करना है, बोले केवल अपने को समेट लेना है। समेटना है माने अपनी अपने विषयों से अपनी इंद्रियों को, और इंद्रियों कैसे समेटना है बोले बड़े संयम के साथ, यम और नियम का पालन करते हुए, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य सोच इंद्रियपण ईश्वर का भगवान का स्मरण करते हुए, सत्य अहिंसा आस्ते ब्रह्मचर्य ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को याद करके सोच दया तप स्वाध्याय और अपरिग्रह ये ग्रहण करते हुए, यम नियम का पालन करते हुए हमें अपनी इंद्रियों पर संयम करना चाहिए। संयम के साथ इंद्रियों को जिसने समेट लिया है कुर्म की तरह, कछुए की तरह। और दूसरी विशेषता है, कछुआ बाहर से देखने में बड़ा कठोर और अंदर से उतना ही कोमल। कठोरता बाहर से विषयों के लिए होनी चाहिए परंतु भीतर से हृदय से बड़ी कोमलता हो। जैसे कछुए के भीतरी अंग कोमल हैं और बाहर से कठोरता है, भगवान कहते हैं ऐसे ही जिसने अपने अभ्यास के साथ इंद्रियों को, इंद्रियाण अभ्यस्त अभ्यास पूर्वक जिसने अपनी प्रज्ञा को बुद्धि को प्रतिष्ठित कर लिया है, अर्थात अपनी इंद्रियों को मन के सहित बुद्धि में स्थित जिसने कर लिया है वो व्यक्ति योगी है। विचार पूर्वक कोशिश करें कि हम इंद्रियों से विषयों को कैसे अलग किया जाए, दोनों की पृथक पृथकता को अलग अलग, इंद्री और इंद्रियों के विषय विचार पूर्वक इनको छोड़ना है। हम लोग रात दिन विषयासक्त होकर, विषयों पर आसक्त होकर, जो विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों के भोगों के पीछे बड़ी बड़ी भारी आसक्ति है। विषय के साथ, भोगों के साथ इंद्रियों की बड़ी भारी आसक्ति हो गई है, और जो आसक्ति छूटने में कठिनता दे रही है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। बोले ये आसक्ति कैसे छुड़ाएं? विचार पूर्वक यम नियम का पालन करके ही ये आसक्ति धीरे धीरे, जैसे जैसे विषयों से छूटती जाएगी और त्यों त्यों बुद्धि में स्थिरता आती जाएगी। आसक्ति को छोड़ने के लिए मैं हमेशा कहा करती हूँ, थोड़ा थोड़ा हमें अभ्यास करना चाहिए। कुछ कुछ समय पर हमें, अमुक अमुक समय पर अपने आप को कभी कुछ छोड़ के, कभी कुछ छोड़ करके हमें अभ्यास करना चाहिए, और ऐसा करते हुए धीरे धीरे सर्वेंद्रिय विषय, सभी इंद्रियों के विषय को जैसे रूप से आसक्ति न हो जाए, ये समझ करके हम हट पूर्वक आंख में पट्टी बांध लें कि कहीं रूप की आसक्ति न हो जाए। ऐसा करके रूप की आसक्ति नहीं छोड़ी जा सकती। कोई व्यक्ति कान से, शब्द से आसक्ति न हो जाए करके कान बंद कर ले, तो उससे कान की आसक्ति नहीं चली जाएगी। अर्थात विवेक पूर्वक बड़े विचार के साथ, इस पर मुझे बात याद आ रही है, महात्मा बुद्ध को बोध हो गया और बड़ी ऊंची स्थिति को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और प्रथम जब घर से निकले थे महात्मा बुद्ध जब प्रथम घर से निकले थे, तो उन्होंने सत्य को खोजने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए बड़ा भारी त्याग किया और खाना पीना सब छोड़ दिया। इतने कमजोर हो गए, एक बार एक छोटी सी तलैया पार करनी थी तो वो तलैया भी उनसे पार नहीं हो रही थी। इतने में एक महिला जिनका नाम सुजाता था, उन्होंने महात्मा बुद्ध को खीर खिलाई और खीर देते हुए इस महिला ने कहा, महात्मा वीणा की तार को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि तार ही टूट जाए, और इतना कसो भी नहीं कि वो टूट ही जाए, इतना ढीला भी न छोड़ो कि उससे स्वर ही न निकले। शरीर के साथ इतना बड़ा अन्याय भी न करो, और इसके साथ इतनी ढील भी इसमें मत दो, अर्थात शरीर का पालन करने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए शरीर का आहार शरीर को मिलना चाहिए, परंतु शरीर की पूर्ति में, शरीर के भोजन को देने में हम इतने लग जाते हैं कि और सब हमारे सामने गौण हो जाता है। महात्मा बुद्ध को खीर दी, उन्हें बोध हुआ, और जब उन्होंने अपनी पूर्ण बोध की अवस्था प्राप्त की, तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद ऐसा कहते हैं कि जब कोई पूर्ण बोध की अवस्था को प्राप्त कर लेता है संत की, तो एक बार उसे अपने घर जरूर जाना पड़ता है पूर्वाश्रम, और वो इसलिए कि वहां जाकर उनसे भी भिक्षा ग्रहण करे, भिक्षा ले, महात्मा बुद्ध अपने गांव लौटे, गांव से बाहर हैं, गांव से बाहर हैं और शिष्य से कहा कि जाकर घर में उन्हें घर उनकी पत्नी यशोधरा थी, उनसे जाकर कहो कि महात्मा बुद्ध को भिक्षा दें। बहुत वर्षों के बाद यशोधरा को यह समाचार मिला, बूढ़ी हो चुकी थी और उन्हें जब यह समाचार मिला तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसने आकर महात्मा बुद्ध से कहा, महात्मा बुद्ध सुने और थोड़े से दोबारा भेजा, तब कोई उत्तर नहीं दिया, कोई भिक्षा नहीं मिली। चौथी बार स्वयं महात्मा बुद्ध जब द्वार पर गए भिक्षा लेने के लिए और वो आंगन में तुलसी के वृक्ष के साथ खड़ी थी, भिक्षा महात्मा बुद्ध जब स्वयं जाकर भिक्षांदेही की भिक्षा लेने के लिए, तो यशोधरा ने कहा महात्मा बुद्ध से, यदि आप जागते हुए मुझसे कहकर भिक्षा लेकर गए होते तो आज आपको भिक्षा लेने के लिए दोबारा यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सोते हुए रात को छोड़ करके गए थे इसलिए भिक्षा लेने के लिए यहाँ आने की आवश्यकता पड़ी। अर्थात सोते हुए आप मुझे छोड़ करके गए थे, यदि आप जागते हुए मुझसे भिक्षा मांग लेते तो आज आपको दोबारा लौट करके यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं ये भिक्षा तो आपको तभी दे दिए होती, तभी मैं आपको दे देती। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो अज्ञान में छोड़ा जाता है, अर्थात जो अविवेका अवस्था में त्यागा जाता है, वो त्याग त्याग नहीं होता नारायण, विवेक पूर्वक, अर्थात जो अविवेक से छोड़ा है। किसी आदमी को मान लो कोई नमकीन चीज अच्छी नहीं लगती है और वो नमक नहीं खाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो त्यागी हो गया है, उसने नमक का त्याग कर दिया। मान लो किसी व्यक्ति को मीठा अच्छा नहीं लगता, वो मीठा खाना छोड़ दिया, तो इसका मतलब मीठा अच्छा नहीं लगता, नहीं खाता, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो मीठे का त्यागी हो गया। त्याग वो नहीं होता जो अज्ञान से किया जाए, त्याग वो होता है नारायण जो विवेक और विचार से किया जाता है। विवेक और विचार पूर्वक जो छूट जाए वो त्याग होता है। तो इंद्रिय के विषय छूटने चाहिए विवेक और विचार पूर्वक, विवेक पूर्ण रीति से, विचार पूर्ण रीति से। यदि आप सर्व विषयों को छोड़ेंगे तो आपके अंदर स्थिरता स्वतः आएगी, स्वतः आएगी। अविचार और अविवेक से त्यागने पर बात नहीं बन सकती, इसलिए भगवान कहते हैं सर्व अंगों को अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से समेट ले, समेटने की क्रिया आनी चाहिए। समेटने की हमें जीवन में सीखना है, संतों की शरण में बैठकर सीखना है, स्वाध्याय से सीखना है। तो क्या सीखना है? अपने आप को समेटना। हम अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से समेट सकें, हटा सकें और आवश्यकता पड़ने पर, कछुआ अपने अंगों को समेटना भी जानता है और वो बाहर निकालना फैलाना भी जानता है। कछुआ अपने अंग फैला करके वो आहार ग्रहण करता है और अपने अंगों को समेट करके वो निर्भयता प्राप्त करता है। अपनी इंद्रियों का वर्तन हमें आना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को किस प्रकार, इनके साथ व्यवहार हमें करना चाहिए, इंद्रियों को का व्यवहार विषयों के साथ केवल केवल भोजन प्राप्त करने के लिए, परंतु हम भोजन प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं, हम तो आसक्ति पूर्वक करते हैं। जिस विषय को प्राप्त किया उसकी एक आसक्ति बन जाती है, उसे पकड़ लेते हैं, जो मिला हमको। भगवान ने हमें जो कुछ दिया, मैं कई बार कहती हूँ, जो लिया हमने यहाँ से लिया, जो मिला हमको यहाँ मिला, और यहाँ जो हमें मिला है, जैसे हम किसी यात्रा में निकलते हैं, किसी होटल या धर्मशाला में रहते हैं, तो हमें धर्मशाला या होटल में बरतने के लिए वस्तुएं मिलती हैं, और कोई व्यक्ति उन वस्तुओं को पाकर आकर्षित होकर उन्हें अपना समझ करके अपने साथ ले जाना चाहे तो उसे ले जाने नहीं दिया जा सकता है, और ये समझना उसका उचित नहीं है। हमें संसार में जो कुछ भी मिला है ये वरतने यही मिला है और यही से प्राप्त किया है, वरतने के लिए प्राप्त हुआ, और यही हमसे बिछुड़ जाएगा। केवल केवल जो हमें वरतने के लिए व्यवहार के लिए मिला था उसको हमने अपना कहकर उसमें इतनी बड़ी आसक्ति कर ली है, और जो हमारे लिए बंधन का कारण है, अनासक्त भाव से, अनासक्ति पूर्वक यदि हम विषयों को, इंद्रियों के विषयों को अनासक्ति पूर्वक उनको ग्रहण कर रहे हैं, कहीं आसक्ति नहीं है, कहीं लिप्तता नहीं है, असंग भाव से विचरण करते हुए असंग होकर अनासक्ति पूर्वक यदि विषयों को हम प्राप्त कर रहे हैं, तो वो विषय हमारे लिए कभी बंधन का कारण नहीं बन सकते। इसलिए भगवान हमें उदाहरण देते हैं, हमारे जीवन में हमें रहना आना चाहिए, बोले कैसे, कुर्म की तरह। बड़ा सुंदर उदाहरण भगवान ने दिया कुर्म का। कुर्म को भगवान कश्यप ने मंद्रांचल पर्वत को पीठ में लिया, बोले ये संयम का पर्वत है और विवेक की रस्सी है, विवेक की रस्सी बनाकर, संयम का पर्वत बना करके जब इसको मंथन कार्य आरंभ हुआ तो तभी तो उससे अमृत की प्राप्ति हुई, अमृत निकला परिणाम में। परंतु यदि अमृत, यदि संयम न हो, विवेक की रस्सी न हो, तो ये मंथन न हो, और मंथन न हो तो अमृत की प्राप्ति न हो। इसलिए सत्य को आधार बना करके, भगवान को आधार बना करके, यदि हम विवेक के साथ और संयम के साथ अपनी इंद्रियों को अपने भीतर करके मंथन करेंगे, तो निश्चित रूप से अमृत की प्राप्ति होगी। और जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर में, हम सब अमृत के इच्छुक हैं, अमृत तो मिले, सब चाहते हैं अमृत रूपी रस को प्राप्त करना, अमृत रूपी अमृत को प्राप्त करना, अर्थात अजर अमरता का अमृत तो सभी चाहते हैं, वो तभी संभव होगा जब अपने आधार में, अर्थात उधार कुर्म के समान अपने अंगों को हम समेट सकें, और उसके साथ साथ संयम पूर्वक स्थिर बुद्धि, एन केन प्रकारण हमारी बुद्धि परमात्मा के साथ स्थिर कर लें, अस्थिर चंचल मति न रह जाए, यही ज्ञान है नारायण। इन्हीं शब्दों के साथ अभी वाणी को विराम देती हूँ। बड़े भाव और श्रद्धा के शेष चर्चा कल करेंगे। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ भगवत नाम स्मरण करें। गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय, गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
लगाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय, गाओ मन मेरे शिवाय 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 वाय शिवाय शिवाय शिवाय, गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय, गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय। बोले सच्चिदानंद भगवान की।